ओम शांति। देखो आप सभी का ये भट्टी का आज तीसरा दिन है। कैसी भट्टी, भट्टी में कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाओ। यहाँ का दिनचर्या स्केड्यूल अच्छा लग रहा है? हाँ, क्लासेस हो रही हैं, योग सब कुछ सबको पसंद है। ये मधुबन में देखो, जब हम मधुबन में आते हैं तो हमें नई नई चीज देखने को मिलती है, नई नई चीजें अनुभूति करने को मिलती है। हाँ, हम यहाँ पे एक नई रिवाज ये भी है कि हम मूली रिवीजन करते हैं। हाँ, मूली सुना, ये कितनी अच्छा हमारा एक संस्कार है कि हम बाबा की मूली को आपस में चिटचैट करते हैं। हाँ, तो आज का भी जो ये रिवीजन है केवल वन वे नहीं होगा, केवल मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों का भी उधर से आंसर आना चाहिए। ठीक है, मूली रिवीजन तो वही होता है। यहाँ पे जब विदेशी सीजन होती है तो हम देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से, अलग अलग देशों से भाई बहने होते हैं ना, तो मूली क्लास खत्म होने के बाद वो गार्डन में जाते हैं, अलग अलग गार्डन में, और छोटा छोटा ग्रुप होता है, आपस में वो मनन चिंतन करते हैं, पॉइंट की लेन देन करते हैं। कारण क्या होता है कि उसमें जो टीचर होती है ना, वो अपनी लैंग्वेज में आपस में वो लोग चिटचैट करते हैं, है ना। तो ये मधुबन में आने के बाद हमें एक बहुत सुंदर सी एक प्रैक्टिस होती है कि हम मुरली का रिवीजन करते हैं। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या बोला, चलो कोई शुरू करो। माताओं बताओ, आज बाबा ने एक कोई एक एक पॉइंट बताओ, बताओ बताओ, खड़े हो। बहुत अच्छा, बाबा ने बोला ये पुरानी देह और पुराने देह संबंधियों को भूल, क्या करना है, एक बाप को याद करना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है ये पुराने देहधारी या पुरानी अपनी देह, इसको भूलना क्यों है? हाँ, पूरा हम बचपन से लेके अपने सभी माँ बाप के, उन्होंने हमें पालना दी है, गुरु ने हमें सिखाया, पर हमें उन्हें भूलना क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी माताओं तो एकदम ज्ञान में, एकदम वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे बाबा ने हम देह की बात कर रहे थे ना, पुरानी देह और पुराने संबंधी, देखो बाबा हमेशा कहता है कि हमारा जो ज्ञान है ना, प्रवृत्ति मार्ग का है। ठीक है, हमें घर छोड़ना नहीं होता है, लेकिन घर ग्रस्त में रहते हुए भी हमें जैसे बुद्धि उसमें फंसानी भी नहीं है। ये बाबा आने के बाद हमें एक ऐसी शिक्षा देता है, एक ऐसी टेक्निक सिखाता है कि सर्व संबंधों को हम मेंटेन करते हुए भी अपनी बुद्धि को प्रणाम रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे जो बाबा बोलते हैं ना, संगम युग जो चल रहा है और जो वर्तमान जैसे हम परिस्थिति देखते हैं, जहां पे संबंधों में इतना दुख है, कहने को तो संबंध होते हैं लेकिन संबंधों में भी आजकल कितना दुख है, तो ये जो संबंधों में अपवित्रता आ गई है या संबंधों में जो गिरावट आई है, मूल्यों की गिरावट, उसके कारण व्यक्ति के कर्म भोग बहुत बनते हैं, है ना, बुद्धि फंसती जाती है। सत्ययुग में देखो बुद्धि नहीं फंसती है, उसका एक उदाहरण हम यहाँ पे भी बताएं। आप मधुबन में देखते होंगे, चाहे ज्ञान सरोवर हो, शांतिवन हो, पांडवन हो, यहाँ पे भी भाई बहने रहते हैं, सीनियर भाई रहते हैं, जूनियर रहते हैं, नए रहते हैं। हाँ, हमारे भी आपसी संबंध होते हैं, डिपार्टमेंटल संबंध होंगे, लेन देन के संबंध होंगे, पर आपने देखा है कभी कोई किसी की बुद्धि फंसती है? नहीं फंसती है ना। हम सबको मालूम है, देखो मैं इंटरनेट में सेवा करता हूँ, लेकिन कुछ होगा, मैंने दीदी को बताया या मेरे जो बड़े हैं उनको बताया और मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं फंसती है। तो जब हम पुरानी देह या देह के जो हमारे संबंध होते हैं, जब हम उसमें लिप्त होते हैं ना, तो हमारी बुद्धि डाउन होती है, हम हल्के नहीं रह पाते घर गृहस्थ में रहते हुए। तो इसीलिए बाबा बोलता है पहले मन से भूलो, सारी बात किसकी आती है, बाबा जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो पहला परिचय क्या मिलता है, निश्चय क्या कराते हैं, कि तुम आत्मा हो, राइट, बिल्कुल। तो सेम यही बात आती है, बाबा उसी को बताते हैं, पुरानी देह को भूल के जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसको याद करना। जब पुरानी देह को भूलेंगे इन्हों तो हमारी बुद्धि हल्की होगी, और हल्की होगी तो फिर क्या होगा, उड़ेंगे, बाबा से सारे संबंध हम जोड़ सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब देह से निकलेंगे तभी तो हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज प्रश्न में यही था बाबा। हाँ, ये बाबा का बहुत गहरा पॉइंट था कि जो पवित्र बनते हैं ना वही बाबा के साथ जाते हैं। सारी आत्माएं तो देखो जब सतयुग आएगा या ये सृष्टि का जो यू नो टाइम चेंज होगा, जब सृष्टि पे पवित्र आत्माएं होंगी, सब आत्माओं को तो वापस जाना है। अभी इसी चीज को अगर हम रिवर्स में देखें, अगर आप जैसे हिस्ट्री पढ़े हैं या हम माताओं ने कोर्स किया होगा, तो जो चक्र की बात आती है, पहले दूसरे धर्म थे क्या, क्रिश्चियनिटी थी, नहीं थी ना, पहले ये इस्लाम धर्म था, नहीं था ना, बाद में ये मुसलमानों का धर्म आया, राइट। तो जैसे जैसे टाइम आता है ये अपने आप आए ना, किसी ने कुछ किया तो नहीं ना। सेम इसी को अगर हम रिवर्स में देखें, टाइम आएगा तो सबको वापस जाना पड़ेगा कि नहीं, कोई कितना भी कुछ कर ले। बाबा इसीलिए बोलता है कि लोग अपनी प्लानिंग करते हैं कि हम चीज ऐसे होंगे, लेकिन ड्रामा अनुसार जो होना है वो होगा कि नहीं, सब आत्माएं वापस शांति धाम जाएंगे कि नहीं। हाँ बताओ, अच्छा बताओ, सबको निश्चय है कि नहीं कि सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी कि नहीं, हाथ उठाओ। हाँ, एक बार बोलते हैं दादी अपने क्लास में बता रहे थे, मम्मा लाइक उनकी मुरली थी, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया क्लास में कि अभी देखो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी है, विदेश की बात हो रही थी, बड़े बड़े स्काई स्कैपर्स बने हैं, यू नो 50-60 मंजिल बिल्डिंग्स होती हैं विदेश में, अमेरिका में लंबी लंबी टावर्स होती हैं। तो मम्मा पूछ रही थी कि बच्चों आपको निश्चय है कि ये सब एकदम सब खत्म हो जाएगा, कितनी सोचने की बात है, आज दुनिया कितनी वेल सेटेड है, और ये निश्चय करना कि ये सब रिसेट होगा। हाँ, इसके लिए निश्चय चाहिए कि नहीं, अगर कोई पढ़ने वाले जैसे बच्चे हों, साइंस पढ़ते हों, लॉजिकली जिनकी बुद्धि चलती हो, वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, आजकल तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है, बढ़ते जा रहा है, रिसेट कहां से होगा। पर ये भी ड्रामा में जैसे नूद है, रिसेट होता है, और रिसेट कैसे होता है, जब बाबा वापस परम धाम जाता है तो सब रिसेट होता है। तो बाबा के साथ हम सबको जाना है कि नहीं, जाना है ना, तो जाएंगे कैसे, बाबा ने आज उसमें ये बताया, जो पवित्र बनेंगे। यस, एक शब्द और था कर्मातीत, कर्मातीत की बात थी ना। हाँ, तो कर्मातीत का मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपने कर्म वगैरह छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं होता है, बाबा तो हमेशा ही बोलता है नहीं, कर्मातीत एक अवस्था है, ठीक है। जैसे हम पवित्र भी बनते हैं तो हमारे मन की अवस्था है ना पवित्र बनना, बुद्धि से तो हम देखो बुद्धि उपराम होती है, भले हम गर्भग्रस्त में रहते हैं, आप सब माताएं हैं, भाई बहने हैं, काम करते हैं, यू नो अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन आप सबकी बुद्धि क्या दूसरे परिवार वालों जैसी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप वैसा सोच सकते हैं जो आपके पड़ोसी नॉन भी के होते हैं, वैसे सोचेंगे आप, कभी नहीं सोचेंगे। तो परिवर्तन कहां से होता है, बुद्धि से, संस्कार से, कर्मों से, यू नो ये सारे परिवर्तन होते हैं, यू नो। तो यही चीज है, कर्मातीत जब हम बनते हैं ना तो हमारे कर्मों में जैसे बाबा बोलते हैं ना, हम समर्पण भाव आ जाता है, निमित्त बनना शुरू हो जाता है, कर्मों की गति हमें पहचान में आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो आज क्वेश्चन क्या था, बाबा ने प्रश्न पूछा था ना कि बाप के साथ वापिस चलने के लिए किस श्रीमत का पालन करना है, कौन कौन से श्रीमत है, एक तो पवित्र बनना है, दूसरा ज्ञान की धारणा, वेरी गुड। देखो सबसे जो मुख्य बात आती है ना, हमारे बाबा के जो बच्चे बनते हैं, दुनिया में बाबा बहुत बोलता है कि ब्रह्मचारी हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, मंडलेश्वर हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। आज सदगुरु को देखो या किसी को भी देखो, उनके ट्विटर पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं। उनको ये बातें अच्छी भी लगती हैं कि सात्विक बनो, रूटीन ऐसे बनाओ, दिनचर्या ऐसे रखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अंतर क्या आता है, बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, बाबा सीधा क्लियर कट बोलता है कि मेरे जो बच्चे होते हैं ना, मैं उनको स्वर्ग के लायक बना रहा हूं। ठीक है, तो कहने का कट क्या होता है, हमारे अंदर धारणाएं होती है, और बाबा धारणाओं भी कैसी कराते हैं, जो एकदम अनपढ़ माताएं होती हैं, घर में रहने वाली भी होती है, उनको वो ऐसा बना देता है ना, लक्ष्मी जैसा, माना देवताओं जैसा, उनकी धारणाओं पे कोई संदेह नहीं कर सकता है। जो बाबा का बच्चा बन गया ना, मतलब बाबा ने बोला कि सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करना है, अमृत वेला, ये हमारी धारणा है, बेसिक धारणा। और इतनी आप एक माता हो, एक बुजुर्ग भाई हो, या कोई कुमार हो, जो बाबा पे जिसका निश्चय हो गया ना कि वो मेरा बाप है, मेरे को परिवर्तन करके साथ ले जाने के लिए आया ना, वो अमृत वेला जरूर करेगा। हाँ, भले वो उठता है, हो सकता है कई बार 4 बजे की जगह 4:30 बजे उठा, लेकिन उठते ही पहले हम क्या करेंगे बताओ, बाबा को याद करेंगे ना। बिल्कुल, देखो मैं आईटी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आईटी को देखता हूँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बेंगलोर में, दिल्ली में, जो आईटी में काम करते हैं, कुमार हैं। हाँ, कई बार वो हम लोग आपस में बात करते हैं तो शेयर करते हैं, तो वो कई लोगों ने ना इतना अच्छा अच्छा वॉलपेपर लगा के रखा है बाबा का मोबाइल में, तो जैसे ही उठेंगे ना वो वॉलपेपर देखेंगे सबसे पहले, कुमार हैं भाई, बुद्धि में क्या अंदर जाना चाहिए ना, इतना सुंदर वॉलपेपर होगा ब्रह्मा बाबा का, या मतलब जैसे अव्यक्त बाप दादा का, तो देखते ही बुद्धि उनसे जुड़ जाती है। कई बार ये देखो सोचने की बात होती है कि हम अपने जो रिसोर्स है ना, उसको भी कैसे यूज कर सकते हैं बुद्धि जोड़ने के लिए। उठते ही सुबेरे, आज दुनिया में बोलते हैं लाइक मोस्टली लोग उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, राइट? अगर मोबाइल हाथ में लेना भी हो और उसमें अगर आप बाबा को देखते हो और एक ऐसा अच्छा सा संकल्प करते हो, बाबा तुम मेरे हो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मतलब ये अंदर से जैसे एक फीलिंग आई। योग हमारा क्या होता है, फीलिंग है ना। आप लोग जैसे किसी, बाबा उदाहरण देता है मुरली में, संबंध, एक कन्या का संबंध किसी से जुड़ता है तो बिल्कुल, तो कन्या का जैसे संबंध जुड़ता है तो वो पहले कैसे मन से जुड़ती है, राइट? शादी तो बाद में होती है, सेम यही चीज होती है। हम बाबा को याद करते हैं ना, पहले हमारा मन का निश्चय कि वो मेरा बाप है या वो मेरा टीचर है। कई बार मुरली की बात आती है ना, जब तक ये निश्चय न हो कि बाप हमारा टीचर है, वो सदगुरु है, वो हमें शिक्षा देके, शिक्षा देके सदगति करता है, ये जब तक निश्चय नहीं हो ना, तब तक मुरली से रस भी नहीं बनेगा, धारणा भी नहीं होगी। मैं आपको कितना भी बोलूं कि आप ये करो, लेकिन मैं आपके लिए अनजान हूं तो आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, जो इस धर्म के होंगे ना वो तुरंत धारणा करेंगे। आजकल साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं डीएनए। हाँ, आप देखेंगे ना डीएनए की बात आती है, तो जो देवी देवता घराने का आत्मा होती है ना, उनका डीएनए ही अलग होता है। हाँ, उनको बड़ी बड़ी बातें, प्योर बनना, सात्विक खाना खाना, लोगों से गपशप मारना, एकदम इजी छूट जाता है, क्योंकि वो उनके डीएनए में नहीं है। उनके डीएनए में क्या होगा, सेवा करना, सेंटर पे जाके अच्छी बातें, दूसरों को अच्छी बातें सुनाना, ये उनके डीएनए में होता है। तो ये एक चेकिंग भी है हमारी, ये निश्चय की भी बात है और चेकिंग की भी, कि हम जो आत्माएं है ना, एक्चुअली हम देवी देवता घराने की आत्मा है, इसीलिए ये सारी बातें हमें अच्छी लगती है, हमारे डीएनए अलग है। आप दूसरे, मैं जैसे विदेश में भी गया हूँ, मैंने लोगों को देखा है, मैं 2018 में यूरोप में था, तो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, यूरोपियन होते हैं, वो बहुत सारी बातें सुनेंगे बुद्धि के स्तर पे आप उनको कन्विंस भी करेंगे, लेकिन निश्चय नहीं होगा उनको। बहुत अच्छी बात है, हाँ वैल्यूज वेरी गुड, इट शुड बी इन सोसाइटी, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए बोलेंगे, लेकिन वैल्यूज लाने के लिए आप शांत रहना शुरू करो, एक दूसरे से प्रेम की बात करो, वो नहीं होगा। तो ये जो डीएनए की बात आती है ना, तो ये देवी देवता घराने वाले जो आत्माएं होती है ना, उनकी बात ही अलग होती है। सबसे ज्यादा गुण किसमें है, अब मैं पूछूं, सबसे ज्यादा शक्तियां किसमें है, बताओ बताओ बताओ, जो देवी देवता घराने की आत्माएं होती हैं, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, समझ रहे हैं? जितना आप लोगों ने, बाबा के बच्चे जो हैं, जितना हमने सुख पाया है, या जितना हमने इस संसार को सुख दिया है, आज साइंस भले सुख देती है, रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, सुख है, लेकिन वो सुख कैसा है, विनाशकारी है कि नहीं? लेकिन हमने जो सुख दिया है, वो शांति का सहयोग हो, या मतलब आत्मा को, किसी दूसरे को हमने यू नो शुभ भावना शुभ कामना से उसको मोटिवेट किया हो, अपलिफ्ट किया हो, तो हमने जितना, बाबा बोलता है ना, दुनिया को आप लोगों ने जितना थामा है, या दुनिया को जितना आप लोगों ने संभाला है, दूसरे उतने संभाल सकते हैं? कभी नहीं संभाल सकते। तो ये सब ज्ञान की इतनी गहरी बातें अगर आप चिंतन करेंगे ना, आज बाबा ने बोला कि एक पॉइंट था ना, देह के जो पुराने देह के संबंध हैं वो दुख देते हैं, सेम इसी बात को बाबा ने एक मुरली में बोला था। देखो दुख कैसे देते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, जन्म लिया हुआ होता है, उसकी उम्र मतलब शरीर छोटा है, 1 महीने 2 महीने का होगा, और वो रो रहा है, ठीक है, जब रोता है ना तो उसको क्रोध आता है ना, तो वो अपनी माँ को थप्पड़ भी मारता है, मतलब मारता है, या जब उसको भूख लग रही होती है तो वो माँ को कट भी करता है, राइट, गुस्सा आएगा तो पिताजी में थप्पड़ भी मार देगा, है ना। तो कहने वाला कहता है आत्मा छोटी, मतलब आत्मा छोटी नहीं होती, आत्मा तो वैसे ही, लेकिन उसके ऑर्गन छोटे हैं, ऑर्गन छोटे हैं, और उसके विकार तो उसमें भी है, तभी वो क्रोध करता है। सत्युग में ऐसे बच्चे नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल, अंतिम जन्म है, और इसमें किसी का भी नहीं, ये हम में भी हो सकता है, किसी में भी होता है, लेकिन ये कैसे है, ड्रामा में चलते चलते वो विकार एक छोटे बच्चे में भी होते हैं, शरीर में विकार थोड़ी होते हैं, विकार तो आत्मा में होता है ना, आत्मा के ऑर्गन छोटे हैं, इसलिए वो छोटे रूप में शो करती है, और जब आत्मा बड़ी हो जाती है तो उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करती है। तो सारे बुड्ढे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बुड्ढा बोलते थे, वो शरीर को देख के बुड्ढा नहीं बोलता है कि समझो, हाँ आत्मा, बाबा का बुड्ढा और जवान होने का कॉन्सेप्ट ही किस पे होता है, आत्मा की शक्तियों पे। वो बाबा जब डायमंड हॉल में आता है तो शरीर को देखता है, बताओ आत्माओं को देखता है वो, तो उसकी तो जो जैसे कनेक्शन होता है ना, हमारा आई कॉन्टेक्ट होता है तो हम कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तुरंत हमारी आई स्कैन करेंगे, अच्छा इनकी एज इतनी है, इन्होंने ये इतना पढ़ा हुआ है, ये यहां से आए हैं, उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, राइट, स्त्री है या पुरुष है, किस, हमारा ऐसा मीडियम बना हुआ है कॉन्टेक्ट करने का, लेकिन परमात्मा का तो ये कॉन्टेक्ट होता नहीं है, वो तो सोल को देखता है, आत्मा को देखता है, राइट, हाँ वो क्या बोलेगा, हाँ मीठे बच्चे आप पहले 16 गला संपूर्ण थे, अब आप पार्ट बजाते 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 भूल गए हो क्या हो, पतित बन गए हो, हाँ संस्कार ऐसे हो गए, चेंज करो। तो भगवान का तो देखने का ये नजरिया ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फिर बाबा ने आज एक और बात बोली थी, कयामत के समय, मतलब जो कर्मातीत नहीं होंगे, कयामत के समय क्या होगा, कड़ी सजा खाएंगे। और एक और थी कि बाबा ने बोला था कि जैसे भटकते रहते हैं, हाँ भटकने वाली बात थी। तो जो आने वाला समय है, बाबा देखो इशारे देता है, ये साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में, दादियों के अनुभव में, ये बहुत सारी बातें आती हैं, कि धीरे धीरे जो समय आएगा ना, उसमें लोगों की जो मनोस्थिति है, आप देख रहे हैं कोविड के समय पे लोग कितना मन से कमजोर हो गए थे, राइट, घबरा गए थे। तो सेम ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लोग मन से कमजोर होंगे, और ऐसी कमजोर अवस्था वाली आत्मा जब अपना शरीर छोड़ेगी तो क्या होगा, भटकेगी। हाँ, और ऊपर से अगर उसका हिसाब किताब हो तो समझो, उसका हिसाब किताब हो किसी के साथ तो ऑब्वियसली वो बार बार आएगी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप हॉस्पिटल में श्रीमंत भाई हैं, तो उनका मतलब वो बहुत सालों से उनका अभ्यास था, उन्होंने 2 बजे मधुबन में जाके योग करना शुरू किया, 2 बजे उठ के बाबा के कमरे में। तो एक बार उनका अनुभव था कि जब वो बाबा के कमरे में जाते थे तो कोई उनको ऐसा फील होता था कि बाहर कोई है और मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ऐसा उन्होंने 1-2 बार फील किया। देखा तो कुछ होता नहीं था, कुछ दिन निकले, एक दिन उनको एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ा कि कोई आत्मा है उनके पीछे है। वो फिर उन्होंने पूछा हिम्मत करके कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बताया कि मैं ऐसे आपको रोज देखता हूँ, आप आते हैं, मैं भटक रहा हूँ, मेरे को मन की शांति नहीं हो रही है, यू नो ऐसे। तो फिर श्रीमंत भाई ने उनको मतलब योग में बोलते हैं उनको सामने जैसे बिठा के उनको कोर्स जैसा कराया, और फिर वो धीरे धीरे वो आत्मा आई, कोर्स पूरा हुआ और धीरे धीरे वो चली गई, यू नो। तो ये भले लगने ऐसा होता है कि हम विश्वास नहीं करें, पर यू नो नए लोग शायद विश्वास नहीं करें क्योंकि वो भौतिकवादी होते हैं, शरीर को मानते हैं, स्पिरिट को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। पर बाबा जैसे बोलता है ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि लास्ट के समय पे जब सब लोगों को अपना हिसाब किताब सब तो करना पड़ेगा, तो ये समस्या, ये जो परिस्थिति है, इसको भी फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपनी अवस्था को बहुत अच्छा, बाबा बोलता है ना, निडर भी बनाना है, निडर भी रहना है और अपनी देह से परे भी रहना है, ये निश्चय। इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल हमें प्रैक्टिस कौन सी करनी है वो बताओ। जितना जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, हाँ कई लोग तो ऐसे हैं मतलब अगर वो डेड बॉडी को देख लेते हैं तो डर लगता है, राइट, होता है ना भाई। ठीक है, बच्चों की तो बात समझ में आती है कि बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी मैंने देखे हैं कि लेकिन वो डेड बॉडी को देखते ही उनको डर लगता है, जबकि हमें मालूम है शरीर अलग चीज है, शरीर तो वो उठ के खड़ा नहीं होने वाला है, फिर भी डर लगता है, होता है कि नहीं। तो ये निश्चय की बात है, तो पहले निश्चय क्या करना है कि हम भी आत्मा है, राइट, शरीर अलग चीज है और मैं शरीर ही आत्मा हूं। ये अभ्यास बाबा आप मुरली में सुनते होंगे बहुत बाहर ये बोलता है, जितना जितना ये अभ्यास होता जाएगा, देह का भान, यू नो अशरीरीपन, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, ये सारी स्थिति कोई दूसरे करेंगे या हमको अभ्यास करना है, हमें ही करना है ना, राइट। तो जब कयामत का समय आएगा, बाबा ने आज वही बोला, बहुत आत्माएं भटक रही होंगे और हो सकता है कि उस समय बहुत सारी आत्माओं को आपको मतलब उनको जैसे होता है ना, बाबा बोलता है ना पानी देना पड़े, भागीरथ अकेला एक भागीरथ थोड़ी है, शास्त्रों में आता है ना गंगा को लेके आए भागीरथ और उनके जो पुरखे थे ना उनको उसने मुक्त किया तारा, तो वो एक भागीरथ अकेला वो थोड़ी है, हम सब भागीरथ है ना, बाबा ने सबको भागीरथ बनाया। और चाहे यू नो ज्ञान की बात हो, वाइब्रेशन की बात हो, आप लोग सेवा करते हैं कि नहीं, आज बाबा ने एक शब्द और बोला रहम दिलवन, कितनी गहरी बात होती है रहम दिलवन, अंधों की लाठी, यू नो अभी अंधे कोई आंख के अंधे की बात बाबा कभी नहीं करते, आंख के अंधों की बात करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, जो बुद्धि से यू नो समझ। अभी हम देखो न्यूज में देखते हैं बड़े बड़े पीएचडी किए हुए लोग होते हैं और कम्युनल वायलेंस करवा देते हैं, तो वो आंखों से अंधे बोलेंगे कि नहीं? मतलब वैसे तो अंधे नहीं है, लेकिन समाज को या मतलब किसी को भी कितना कितना लोगों का जीवन प्रभावित होता है, कितने लोगों का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। सेम इसी के अगर कॉन्टेक्ट में बोलें तो बाबा हमें वैसा बनाता है, आप अंधों की लाठी हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन अंधों की लाठी हो, क्योंकि आपकी बुद्धि खुल चुकी है, आप दूसरों की बुद्धि को खोलेंगे, राइट। तो उसी हिसाब से बाबा ने आज बहुत सुंदर बातें बताई थी, अंधों की लाठी बननी है, ये धारणा का पॉइंट था, ठीक है। जब आप अपने घर में होते हैं या मतलब जहां पे भी होते हैं, बाबा हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान की टिकटॉक होती रहनी चाहिए, ये इतनी अच्छी धारणा है। आप मुरली से दो पॉइंट ले लो, कोई भी जो अच्छे लगते हैं, हाँ, और आपस में घर में जब आप होते हो, जिनसे आपकी दोस्ती होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं होती कई बार, लेकिन आप सही बात कर लो उनसे, एक जैसा मूड होता है आप वो बात उनसे नैरेट कर दो या चिट चैट कर लो या उसकी सुन लो, तो वो जैसे आपने उस आत्मा का उद्धार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है। आप अगर देखो, कई बार देखा है, मैं बहनों को देखा हूं, वो बाबा उनको इतना होशियार कर देता है कि जब आप ज्ञान की बात करते हैं ना, तो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये कैसे है, इनसे हमें कैसे बात करनी है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा मोड ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए, जो बातचीत करने का तरीका होना चाहिए ना, वो ज्ञान के बेस पे होना चाहिए, सेवा के बेस पे होना चाहिए, सेवा के बेस पे। बाबा हमेशा बोलते हैं, दादियों को तो देखो पहले बेचारे, आज हम देखते हैं इतने बड़े हॉल में बैठे हैं, इतना अच्छा बाहर, इतना देखो सब कुछ होता है, लेकिन दादियों ने जिन्होंने, मैंने इतने पुराने पुराने फोटो देखे ना दादियों के, जमीन पे बैठ के रेलवे स्टेशन पे वो खाना खा रहे हैं, एक चद्दर बिछा के, पांच छह दादियां बड़ी बड़ी, हाँ, बड़ी दादी की आता है कि वो जो स्लीपर होती थी उस पे नीचे बिछा के सोके, तो उनके त्याग का तो हम कोई कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनका सीखने की बातें होती हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे गए तो कैसे सेवा की, किसी से मिले तो कैसे सेवा की, बाबा ने जो जो टेक्निक बताई प्रैक्टिकली तो उन्होंने अप्लाई किया कि नहीं। आज सर्वव्यापी की बात थी ना, बाबा ने सर्वव्यापी की बात बोली थी, तो ये बाबू जी ये बात मेरे को समझ में आती है। देखो दो तरीके होते हैं, बाबा इसको मुरली में भी बोलते हैं कि जब आत्मा, एक तरफ तो आप बोलते कि वो स्वर्ग में गया, फिर भोजन खिला रहे हो, राइट। पर हमें सत्य ज्ञान है, कोई भी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाती है, हमें तो मालूम है ना। हाँ, अभी कोई भी बाबा, जब शिव बाबा गेट खोलता है ना, तब सभी आत्माएं शांति धाम भी जाती हैं और स्वर्ग में भी जाती हैं, ये तो हमें ज्ञान है ना। हम भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाबा ने हमें, मतलब हमारा एक परिवार कनेक्शन है, केवल शरीर की बात नहीं आती है, हम आत्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, राइट। ब्रह्मा बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, और देखो हमारा तो ये हमेशा ही कॉन्सेप्चुअल विश्वास होता है कि एडवांस पार्टी हमारे साथ है, मम्मा बाबा आज भी है, सेवा कर रहे हैं, तो हम उनको भोग ऑफर करते हैं, बड़ी बड़ी दादियों को भोग ऑफर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल योगदान देते हैं, हमारा तो सारा फीलिंग का बात होती है, तो मैं सर्वव्यापी की, बस लास्ट पॉइंट है, सर्वव्यापी की बात कर रहे थे, तो बड़ी दादी एक बार मुरली सुना रहे थे ओम शांति भवन में, प्रकाश मणि दादी, और बैठे हुए थे, तो उसमें पॉइंट आया मुरली में कि दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी बोलते हैं, उनको कंकड़ पत्थर किसी में भी जैसे बोल देते हैं, तो ये जैसे बोलना था ना उसमें था कि उनको कंकड़ पत्थर ठिक्कर, बाबा की जो लैंग्वेज होती है ना उसमें दादी ने पढ़ा, तो दादी ने तुरंत, उनके भाव आज भी मेरे को याद है, दादी ने तुरंत ऐसे मुंह पे हाथ रखा और बोला नहीं, बोले ऐसा सेवाबा के लिए कभी नहीं, मतलब वो उनके जो भाव थे ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, दादी ने ऐसा सेवाबा के लिए कभी नहीं, वो सर्वव्यापी नहीं, वो हमारा बाप है। तो ये चीज मैं आज भी याद करता हूँ कि जो हमारे बड़े लोग हो गए उनका निश्चय या उन्होंने परमात्मा को कितनी गहराई से पहचाना था, जाना कि वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। शिव बाबा के लिए कंकड़ पत्थर ठिकर ऐसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सेम यही चीज है, हमें भी अनुभूति करनी है अभी। हाँ। नहीं ये तरक्की की बात नहीं होती, ये तो देखो हमारी शुभ भावना होती है, हम उस आत्मा के लिए हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। आपने यहाँ मधुबन में एक रीति रिवाज देखा होगा कि जैसे कोई भी बड़ी बहनें शरीर छोड़ती हैं, सेंटर के इवन भाई छोड़ते हैं, माताएं छोड़ती हैं, तो हम 2 मिनट योग करते हैं सारे ब्राह्मण कलेक्टिवली। शुभ भावना चाहे वो शांति की वाइब्रेशन हो या पावरफुल वाइब्रेशन हो या वो आत्मा जो उस समय पे उसको कार्मिक अकाउंट सेटल कर रही है, यू नो आत्मा को भी तो कार्मिक अकाउंट सेटल करने होते हैं, या वो जहां जाने वाली होती है उसको जो सेवा करनी है उसमें उसको सहयोग मिले, ये हमारी शुभ भावना होती है, शुभकामना होती है। ओम शांति।